Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Keno Upanishad, presented by Swami Sri Vishwatmananda Puriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Narayan, 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 Narayan. Swami Ji ki bahut badi kripa hai. स्वामी जी प्रेमपुरी आश्रम के ट्रस्टी हैं। ये संत यहां हमें जगाने के लिए आते हैं कि उठो, जागो और अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करो। स्वामी जी हमें केनो उपनिषद पर प्रवचन करेंगे। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और आश्रम की ओर से स्वामी जी का पुष्पहार द्वारा अभिनंदन करता हूं।
अप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिष्यत् सुधर्मा स्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन परम गुरुदेव श्री प्रेमपुरी जी महाराज के चरणारविंदों में कोटिशः प्रणाम। परम प्रेमास्पद प्रेमपुरी आश्रम के सत्संगी भाई एवं बहनों, गत वर्ष ईशावास्योपनिषद का प्रवचन हुआ था। ईशा प्रस्थान त्रय में जिन पर भगवान भाष्यकार का प्रसन्न गंभीर भाष्य है, तो स्रोत प्रस्थान में 10 उपनिषदें आती हैं। तो प्रथम उपनिषद है ईशावास्योपनिषद, जिस पर यथामति पर साल तथा गत वर्ष हम लोगों ने विचार किया था। क्रमतः 10 उपनिषदों में द्वितीय उपनिषद है केनोपनिषद। ये सोचा कि इस जन्म मृत्यु रूपी जो सागर है, इससे मुक्ति तो तभी मिल सकती है, भवसागर से पार जीव तभी हो सकता है जब जन्म मृत्यु रूपी भव का निमित्त अविद्या, काम और कर्म, इनकी हमेशा के लिए निवृत्ति हो जाए। जब तक अविद्या, काम, कर्म जीव के पास बने रहेंगे तब तक जन्म मृत्यु से मुक्ति की अभिलाषा नहीं की जा सकती, और अविद्या, काम, कर्म को निवृत्त करने का शास्त्र एक ही उपाय बताते हैं, वो है आत्म साक्षात्कार ही। ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव जिस क्षण होगा उसी क्षण शास्त्र बताता है कि हमारे जन्म मृत्यु के निमित्त अविद्या, काम और कर्म की निवृत्ति हो जाती है। भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, यह मुंडक मंत्र यही बता रहा है कि परावर शब्दित परमात्मा का जब आत्मरूप से साक्षात्कार होता है तो हृदय ग्रंथि शब्दित जो अनात्मा शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का आत्मरूप से ज्ञान रूपी अध्यास है, अनात्मा का आत्मरूप से ज्ञान, इसी का नाम है अध्यास भ्रम अविद्या, यह निवृत्त होती है। विद्यते हृदय ग्रंथि, और जितने भी अपने स्वरूप विषयक संशय साधकों के, तत्व जिज्ञासुओं के बुद्धि में आते हैं उन सब की निवृत्ति हो जाती है परमात्म बोध से। भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इसके जन्म मृत्यु के हेतुभूत जितने भी अभुक्त कर्म हैं उनका नाश हो जाता है। और जब प्रारब्ध कर्म से अतिरिक्त संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं ज्ञान से, और क्रियमान कर्मों का ज्ञानोत्तर काल में जो ज्ञानी की उपाधि शरीर इंद्रिय मन के द्वारा होने वाले कर्म है उन्हें कहा जाता है क्रियमान कर्म, उनका असंश्लेष होता है, फिर ज्ञानी को, ज्ञानी के साथ उन कर्मों का संबंध नहीं बनता। और प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही तस्य तावद एव चिरम यावन विमोक्षे अथ संपत्से, यह एक छांदोग्य उपनिषद का वचन है। यह बताता है कि ब्रह्मज्ञानी का शरीर प्रारब्ध का भोग करके जब छूट जाता है, जिस क्षण छूटता है उसी समय ब्रह्मज्ञानी अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है, यानी विधेय कैवल्य को प्राप्त करता है। जीते जी ज्ञान का फल है जीवन मुक्ति, और शरीर छूटने के बाद अदृष्ट फल है विधेय मुक्ति, कैवल्य मुक्ति। इसका साधन यानी अविद्या, काम, कर्म, ज्ञान से निवृत्त होते ही अब जन्मांतर का निमित्त न होने से ज्ञानी का जन्म नहीं होता, न स पुनरावर्तते इत्यादि श्रुतियां, आत्मज्ञानी का शरीर छूटने के बाद में पुनर्जन्म नहीं होता है ये बताती हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित इत्यादि शास्त्र वचनों ने बताया हुआ जन्म, जन्मानंतर भावी अस्तित्व, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय तथा विनाश रूपी जो छह भाव विकार है, इन छह भाव विकारों से रहित ब्रह्म है, आत्मा है, उस स्वरूप में स्थित हो जाता है ज्ञानी। इसका उपाय मात्र एक ही है और वो है आत्मज्ञान। ज्ञानादेव तु कैवल्यम, रीते ज्ञानान्न मुक्ति। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय इत्यादि कई एक श्रुति वचन ये बता रहे हैं कि परमात्मा का आत्मरूप से ज्ञान ही एकमात्र उपाय है मुक्ति का। तो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना है तो परमात्मा का ज्ञान कराने का सामर्थ्य जिस प्रमाण में है उसी प्रमाण की शरण लेने की आवश्यकता है। जो रूप को जानना चाहता है तो आंख बंद करके रूप को नहीं देख सकता। तो जैसे रूप ज्ञान का साधन एक ही है वो है चक्षु। रूप ज्ञान जिससे होता है उसे कहा जाता है रूप ज्ञान का प्रमाण। ऐसे आत्मज्ञान जिससे होगा वो हो जाएगा आत्मविषयक प्रमाण। और आत्मा को बताने का सामर्थ्य प्रत्यक्षादि प्रमाणों में नहीं है, लौकिक प्रमाणों में। प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं आपकी इंद्रियों को। इंद्रिया बाह्य रूपादि विषयों को बता सकती है। चक्षु इंद्रिय से आप रूप या रूपवान वस्तु को देख सकते हैं। श्रोत्र इंद्रिय शब्द का ज्ञान करा सकता है। तो घ्राण इंद्रिय से आप गंध को जान सकते हैं। त्वग इंद्रिय से स्पर्श को जान सकते हैं। रसन इंद्रिय से रस जो खट्टा मीठा आदि है उसे समझ सकते हैं। लेकिन ये रूपादि तो सब अनात्म वस्तुएं हैं, इसलिए इंद्रियों को कहा जाता है अनात्मा रूपादि पदार्थों के विषय में प्रमाण। और आत्मा को बताने का इनमें से किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। रूप से रहित आत्मा होने के कारण आप चक्षु से आत्मा को नहीं देख सकते। शब्दातीत होने से, शब्दात्मक न होने से उसे श्रोत्र इंद्रिय से ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो आत्मा है अतिंद्रिय, इसलिए इंद्रिय ग्राह्य न होने से उसे कहा जाता है अतिंद्रिय। और उस अतिंद्रिय आत्मा को जनाने का, आत्मा का ज्ञान कराने का सामर्थ्य मात्र शब्द प्रमाण में है। शब्द प्रमाण में भी जो अपौरुषे वेद है उस अपौरुषे वेद से आत्मा को जाना जा सकता है। तंतु औपनिषदम पुरुषम पृच्छानि, इसमें ये कहा गया कि वह वेद में भी जो वेद का, वेद के दो प्रकरण हैं, प्रतिपाद्य विषय भेद को लेकर के वेद दो प्रकरणों में विभक्त हैं। वेद का प्रतिपाद्य इतना बड़ा जो वेद है, जो हमारा मूल ग्रंथ है, उसके द्वारा क्या बताया गया है तो मात्र सारे वेद धर्म तथा ब्रह्म दो ही अर्थ बताते हैं। तो धर्म का प्रतिपादक वेद कर्मकांड कहलाता है और वेद का जो भाग ब्रह्म को बताता है उसे ही वेदांत या उपनिषदें, ज्ञानकांड इन नामों से कहा जाता है। तो प्रस्थान त्रय में ये जो उपनिषदें, दस उपनिषदें हैं, उनके द्वारा आपके वास्तविक स्वरूप का ज्ञापन किया जा रहा है। आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसे जानने पर ही मुक्ति मिलती है और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जनाने का सामर्थ्य मात्र वेदों के ज्ञान कांड में है। और वेदों के ज्ञान कांड का तात्पर्य निर्धारण करने वाला जो वेद व्यास जी के द्वारा रचित वेदांत दर्शन है ब्रह्म सूत्र, उसमें है। वे उपनिषदों का ही वास्तविक जो अर्थ है उसे बताते हैं ब्रह्म सूत्र। और सारी की सारी उपनिषदें गायों के तरह गायें हैं और उन गायों का सार रूप जो गोरस होता है दूध, तत्स्थानीय जो गीता है सारे उपनिषदों की सारभूता, इसलिए उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्य जो आत्मा है उसी आत्मा का सरल और सुस्पष्ट शब्दों में मात्र 700 श्लोकों में प्रतिपादन श्रीमद् भगवद गीता करती है। इन तीनों को मिलकर के कहा जाता है प्रस्थान त्रय, 10 उपनिषदें, ब्रह्म सूत्र और श्रीमद् भगवद गीता। उपनिषदें हैं स्रोत प्रस्थान, तो ब्रह्म सूत्र है दर्शन प्रस्थान और स्मार्त प्रस्थान है श्रीमद् भगवद गीता। इन तीनों का यदि ठीक से विचार आप करते हैं तो आप जिसको जानने की इच्छा कर रहे हैं, आपको जिसको जानने की इच्छा है, आपके अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की इच्छा है, तो आपके अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान इन ग्रंथों से होता है। ये शब्द प्रमाण रूपी उपनिषदें, ब्रह्म सूत्र, गीता आत्मा के वास्तविक स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। इनके चिंतन से, इनके श्रवण से, इनके अर्थ के मनन से, इनके अर्थ के निधिध्यासन से आत्मज्ञान होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेय ने मुक्ति का साधन बताने के लिए निवेदन किया याज्ञवल्क्य जी से, और अमृतत्व कहो या मुक्ति कहो, मुक्ति के उपाय के रूप से याज्ञवल्क्य जी अपनी प्रिय पत्नी मैत्रेय से यही कहते हैं कि आत्मावारे द्रष्टव्य, यदि तुम मुक्त होना चाहती हो, अमृतत्व को प्राप्त करना चाहती हो, तो आत्म प्रतिपादक ग्रंथों का विचार करो, पहले आत्मज्ञान प्राप्त करो, आत्मज्ञान से ही मोक्ष होता है। और उस आत्मज्ञान का उपाय क्या है, तो कहा द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। आत्म प्रतिपादक प्रस्थान त्रय का तुम श्रवण करो, विचार करो, मनन करो और निधिध्यासन करो, इसी से आत्मज्ञान होगा और आत्मज्ञान से मुक्ति होगी। और उनमें भी दसोपनिषद में जो एक प्रसिद्ध उपनिषद है क्रम में द्वितीय उपनिषद केनोपनिषद, केनोपनिषद का भगवान भाष्यकार आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी के बुद्धि में भी बड़ा महत्व है। इसलिए आप देखते हैं शंकराचार्य जी ने जितने ग्रंथों पर व्याख्यान किया है, भाष्य लिखा है, उनमें से केवल एक केनोपनिषद ऐसा ग्रंथ है जिस पर आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी के दो दो भाष्य हैं, एक पद भाष्य है, दूसरा वाक्य भाष्य है। भाष्यकार भगवान ने दो व्याख्याएं इस उपनिषद की हैं, उनमें से दोनों के भी द्वारा उपनिषदों का पहले तो शब्दार्थ जो पदभाष्य है उससे प्रतिपादित हुआ, और उपनिषद केनोपनिषद का परम तात्पर्य जो है उसका प्रतिपादक वाक्य भाष्य है। तो केनोपनिषद के माध्यम से आत्मा के कहो या ब्रह्म के कहो, आत्मा ब्रह्म ये दोनों उपनिषदों में पर्यायवाचक शब्द हैं, इसलिए कहीं कहीं कहा जाता है ब्रह्मैव इदमग्र आसीत, तो कहीं कहीं कहा जाता है आत्मा वा इदमग्र आसीत, का मतलब उपनिषदों की दृष्टि में आत्मा और ब्रह्म ये दोनों पर्यायवाचक शब्द हैं। इसलिए केनोपनिषद में आत्मा के कहो या ब्रह्म के कहो दो स्वरूपों का स्पष्ट रूप से वर्णन प्रतीत होता है, एक निर्गुण निराकार स्वरूप का जो आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप है, और दूसरा सगुण स्वरूप का। और इसमें केनोपनिषद का जो प्रतिपाद्य विषय है ब्रह्म आत्मा, इसका सरलता से वर्णन करने के दृष्टि से श्रुति ने कल्पना की है कि शिष्य और गुरु इन दोनों का आपस में संवाद है, और केनोपनिषद है सामवेद की प्रसिद्ध जो चार वेद हैं उनमें से सामवेद, जिसे भगवान गीता में अपना स्वरूप कहते हैं, 10वें अध्याय में भगवान ने विभूति योग में अपने अलग अलग स्वरूप बताए हैं, तो उनमें से कहते हैं कि वेदों में सामवेद मैं हूं, वेदानाम सामवेदोस्मि। और सामवेद की अनेक शाखाओं में से एक प्रसिद्ध शाखा है तलोकार शाखा। तलोकार शाखा के ब्राह्मण भाग में 9 अध्याय हैं, उनमें से 8 अध्यायों का प्रतिपाद्य विषय है कर्म और उपासनाएं। 9वां अध्याय है ये केनोपनिषद। तलोकार शाखा के ब्राह्मण भाग को, मूल ग्रंथ को आप देखेंगे तो उसमें 9 अध्याय आपको देखने को मिलेंगे। उन 9 अध्यायों में से 8 अध्याय का प्रतिपाद्य विषय आप देखेंगे तो कर्म और उपासनाएं उसमें वर्णित है। कर्म 2 प्रकार के हैं, धर्म तथा अधर्म नाम से कहे जाने वाले पुण्य कर्म, पाप कर्म। पुण्य कर्मों का ये बताया गया वहां पर कि यदि संसार अंतःपाती फल के उपभोग की कामना से अनुष्ठान करते हैं तो उससे स्वर्गादि लोक की प्राप्ति होती है, और पाप कर्म करने वाले को तो नारकीय योनि प्राप्त होती है। और शास्त्र भी थी पुण्य कर्म जो कर रहे हैं लेकिन उससे किसी संसार अंतःपाती फल विशेष को भोगने की कामना नहीं रखते, अपितु इस उद्देश्य से करते हैं कि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धः, अंतकरण की शुद्धि के उद्देश्य से। जो प्रथम 8 अध्यायों में वर्णित कर्म तथा उपासनाओं का अनुष्ठान मनुष्य करते हैं तो ये कहा गया कि उन निष्काम भाव से किए हुए कर्म तथा उपासनाओं के फलस्वरूप मनुष्य अंतकरण में विद्यमान जो अपने वास्तविक स्वरूप के ज्ञान में प्रतिबंधक दोष हैं, जो अंतकरण में रहते हैं, मल और विक्षेप, इनकी निवृत्ति होती है, अंतकरण शुद्ध होता है और शांत हो जाता है कर्म तथा उपासनाओं के अनुष्ठान से। और जिनका प्रथम 8 अध्यायों के द्वारा वर्णित कर्म तथा उपासनाओं के अनुष्ठान से चित्त शुद्ध हो गया है, सूक्ष्म हो गया है, शुद्ध चित्त की पहचान ही है कि शुद्ध चित्त में जो वस्तु जैसी है ऐसी प्रतीत होती है। चित्त शुद्धि की पहचान है कि आपको कोई वस्तु जैसी है उससे विपरीत प्रतीत नहीं होगी, दिखेगी नहीं। जैसे सांप दर्पण हो तो सांप दर्पण में आपका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, ऐसे ही और उस चेहरे पे थोड़ा बहुत भी दाग हो तब भी स्पष्ट दिखता है। ऐसे शुद्ध अंतकरण में संसार जो वस्तुतः ही अनेक दोषों से ग्रसित है और उन अनेक दोषों से दूषित संसार का स्वरूप शुद्ध अंतकरण से वैसा ही प्रतीत होता है, उसमें अनित्यत्व है, साधन पारतंत्र है, ऐसे अनेक जो दोष हैं, और उन दोषों से दूषित संसार को जब शुद्ध चित्त देखता है तो यह नियम होता है कि चित्त का स्वभाव है जब तक उसे किसी वस्तु में गुण गुण ही दिखते हैं तभी तक उसमें आसक्त रहता है। जिस दिन चित्त को किसी वस्तु के विषय में दोष दिखे, दोष दर्शन हो जाए, तो उस वस्तु में आप अपने चित्त को भेजना चाहोगे तब भी नहीं जाता है, वहां से अलग हो जाता है, राग उस वस्तु विषयक जो राग है उस राग की निवृत्ति होती है। राग निवृत्ति का उपाय है दोष दर्शन, और वस्तु संसार में विद्यमान जो अनित्यतादि दोष है उन दोषों का उसे शुद्ध चित्त से दर्शन होता है, और शुद्ध और दोष दर्शन होने से वैराग्य होता है, विरक्त हो जाता है। और ये कहा गया कि आत्मा के प्रतिपादक उपनिषदों का परम तात्पर्य विषय आत्मा का ज्ञान किसके चित्त में हो सकता है, जिसको वास्तविक रूप से अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की जिज्ञासा हो, तत्व जिज्ञासा हो, और तत्व जिज्ञासा वास्तविक जो है उत्पन्न होती है उसी के अंतकरण में जो शुद्ध चित्त है। सदोष अंतकरण में वास्तविक आत्म जिज्ञासा ही नहीं होती है। वास्तविक आत्म जिज्ञासा नचिकेता को ही कठोपनिषद में आपने कई बार सुना होगा, और वास्तविक आत्म जिज्ञासा से यमराज जी के पास में नचिकेता ने तृतीय वर के रूप में अपने लिए जब मांगा, दो वर तो पिता के रूप के लिए मांग लेते हैं, पिता के ऐहिक सुख का भी प्रथम वर से मांग की, तो द्वितीय वर से पिता के लिए स्वर्गलोक चाहिए था तो स्वर्गलोक के साधन को मांगा, तो तृतीय जो वर है वो अपने लिए मांगा नचिकेता ने, और उसमें यही कहा कि मुझे आत्मा का ज्ञान कराइए आप, आत्म जिज्ञासा प्रकट कर दी। और नचिकेता को आत्मज्ञान, बस नचिकेता ने कहा कि आत्मोपदेश आप करिए, और इतने मात्र से ही यमराज जी ने आत्मा का उपदेश नहीं किया, परीक्षा ली नचिकेता की। और नचिकेता जब परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तब ये नचिकेता को देखा यमराज जी ने कि ये सच्ची आत्म जिज्ञासा से संपन्न है, आपके अंतकरण में जब जिस किसी भी विषय की सच्ची मांग उत्पन्न होती है, सच्ची मांग कहो सच्ची इच्छा कहो, तो ईश्वर उसके सहायक बन जाता है। नचिकेता की वास्तविक आत्म जिज्ञासा है, इसकी पहचान हुई कि नचिकेता को यमराज जी बिना साधन के ही संसार के सारे भोग उपलब्ध कराने के लिए तैयार हो गए। यहां तक कि मनुष्य शरीर से जिन भोगों को नहीं भोगा जा सकता ऐसे स्वर्गलोक तथा ब्रह्मलोक के भोग भी नचिकेता को देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन नचिकेता के अंदर इन सब यहां से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत के भोगों में जो दोष है उन दोषों का दर्शन हुआ, क्योंकि शुद्ध चित्त था। और नचिकेता कहते हैं कि ये सारे के सारे जो भोग आप मुझे दे रहे हो ये सब तो कैसे हैं, ये इंद्रियों के तेज को नष्ट करने वाले हैं। सो भावा मर्त्यस्य जरयन्ति तेजः, मनुष्य के तेज को नष्ट करने वाले हैं, और ये अनित्य है, आज नहीं तो कल ये समाप्त होने वाले हैं। और इन दोषों के दर्शन के माध्यम से फिर क्या हुआ कि इनके प्रति वैराग्य होने से ये कहते कि ये सारे के सारे आपके पास रहने दो, तवई ववाहा तव नृत्य गीत। और ये इससे जब वैराग्य हुआ, नचिकेता के वैराग्य की परीक्षा हुई, तो केनोपनिषद के संबंध भाष्य में भाष्कर भगवान ये कहते हैं कि ऐसा सारा जो यहां से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत का साध्य साधनात्मक संसार है उस संसार के प्रति जिसका चित्त विरक्त है, अर्थात जो साधन चतुष्टय से संपन्न है, वह यदि चाहे मैत्रेय आप उपनिषदों में जिस किसी को भी लो, चाहे मैत्रेय को लो, नचिकेता को लो, या अन्य किसी को भी लो, जिनके अंतकरण में लौकिक भोगों के प्रति आकर्षण नहीं है। ऐसे ही व्यक्तियों को ब्रह्म विद्या के अधिकारी के रूप से शास्त्र उपस्थित करता आपके सामने उदाहरण के रूप में। नचिकेता का अंतकरण इस लोक के या परलोक के भोगों के आकर्षण से आकर्षित नहीं है, मैत्री का भी नहीं है। ऐसे लोगों को ब्रह्म विद्या का अधिकारी बताया गया है। ऐसा ही और ये सब शुद्ध चित्त से नित्यानित्य वस्तु विवेक होता है। नित्यानित्य वस्तु विवेक होने विवेक की पहचान है अनित्य वस्तु से वैराग्य। और नित्य वस्तु एक आत्मा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वचनों से श्रुति बताती है कि सत्य एक ब्रह्म है, परमात्मा है। और उस सत्य वस्तु की आकांक्षा प्राप्त करने की, जिसे मुमुक्षा कहा जाता होती है। और ये नियम होता है कि फलेच्छा उपाय इच्छा की जनक होती है। फल है मोक्ष,